Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050, and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar. Hazir hai Market Mantra ke ek aur taaza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lete hain, saath hi nazar dalte hain pramukh antarrashtriya share bazaron ke chadte utarte graph par. Baat karenge aaj saptahik शेयर बाजारों की, कैसा रहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस सप्ताह. और आज का दिन, जैसा कि आप सबको मालूम है, श्रोताओं के लिए होता है. आप चाहें तो अर्थ जगत से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं. तीन टेलीफोन लाइन हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर हैं 2331-4444 और 2342-1050. तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल पूछें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो मौजूद हैं शरद कोहली, मार्केट एक्सपर्ट. बहुत बहुत स्वागत शरद आपका.
वार्म वेलकम शरद.
धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन.
बिल्कुल, और शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा. सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में.
Reserve Bank of India announces an increase in the limit for collateral-free agricultural loan from 1.6 lakhs to 2 lakh rupees. On Wall Street, the Dow and the S&P 500 end at record closing highs. And Brent crude oil futures surge 5% during the week to end at $74.49 a barrel.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया. अमरीकी बाजारों में डाउ जोन्स और एसएनपी 500 बढ़त के साथ बंद हुए, और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में इस सप्ताह 5% की बढ़ोतरी, $74.49 प्रति बैरल हुआ. भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना कोलेट्रल के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया है. यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है. इस निर्णय से किसानों पर मुद्रास्फीति और कृषि की बढ़ती लागत का प्रभाव कम होगा.
So, Sharad, this is a good move because this will provide enhanced financial access to farmers, ensuring that they have sufficient resources to meet their operational and developmental needs.
Oh, yes, it will ease the cash flows as far as farmers are concerned. And I think it will bring much needed relief, especially in the times of distress where you need a lot of cash. And every time a farmer goes to the bank, you know, when the banker demands collateral, I think the farmer is unable to arrange for the same. So I think collateral free 2 lakhs is a very welcome relief for the farmers.
Okay. We have our first caller online with us from Delhi, Vijay. A warm welcome.
नमस्कार सर.
नमस्कार जी.
सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास HDFC लाइफ के शेयर हैं, 4 या 6 हैं
जी.
अभी वो डाउनफॉल में चल रहा है, इसका रीजन क्या है?
विजय जी, आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, शुरू में आपको बताया जाता है कि हम किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक पर कमेंट नहीं करते हैं, इस कार्यक्रम का नियम है शुरू से। तो मैं आपसे क्षमा मांगते हुए ये बोलूंगा कि हम आपने जो स्टॉक नाम लिया है उसके ट्रेंड के बारे में तो यहाँ बातचीत नहीं कर पाएंगे, पर ओवरऑल मैं आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। मैं समझता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर एक चढ़ता हुआ सेक्टर है और भारत में उसकी पेनिट्रेशन, उसकी समझ जैसे जैसे बढ़ रही है तो लोग इंश्योरेंस को अब समझ रहे हैं, और ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने जिस प्रकार अपने पांव जमाए हैं वो भी प्रशंसनीय है। इस प्रकार जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके प्रीमियम में ग्रोथ नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल क्षेत्र मुझे लंबी अवधि पे विजय जी अच्छा नजर आता है। जो छोटा मोटा जो फॉल होता रहता है बीच में, मार्केट करेक्शन में जाती है, तो उस पर इतना अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लंबी अवधि के लिए इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर्स को रखें। इस स्टॉक स्पेसिफिक पर हम आपसे क्षमा मांगते हुए कमेंट नहीं कर पाएंगे।
मनीष अगले कॉलर है दिल्ली से। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ा।
हेलो
जी, बताएं, पूछें सवाल।
जी मार्ग मंत्र टीम को मेरा नमस्कार, डॉक्टर कोहली साहब को भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मनीष
जी, मेरी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि बैंक रापसी में तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं सरकार, ठीक है, बैंक दे रहे हैं
जी।
इवन डिपोजिट इज मोर देन 5 लाख ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर, तो ये कानून क्या डाकखाने यानी पोस्ट ऑफिस में भी लागू है सर? नंबर वन
जी।
नंबर टू ये है कि कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी अगर परचेज किया जाए और उसको 6 महीने या साल के अंदर सेल कर दिया जाए, उसमें अगर 2-4-5 लाख का प्रॉफिट भी होता है, तो ये प्रॉफिट अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट में रखना पड़ेगा या होल अमाउंट रखना पड़ेगा? ये दो क्वेश्चन मेरा। थैंक यू सर।
चलिए मनीष, पहले तो आपका सवाल है 5 लाख रुपए जो DICGC का इंश्योरेंस होता है वो बैंक्स के लिए वो नियम लागू होता है। पोस्ट ऑफिस एक सॉवरेन इन्वेस्टमेंट है क्योंकि सीधा आप केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान में निवेश करते हैं, तो वहां पर 5 लाख का। और वहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पर अगर हम जो डूबने की बात करते हैं वो डूबने की बात नॉर्मली बैंकों से संबंध करके करी जाती है कि भाई बैंक अगर कोई डूब गया या कोई, ये पोस्ट ऑफिस के संबंध में डूबने का प्रश्न नहीं होता। बहुत ही कोई विकट परिस्थिति पैदा हो जाए एक्सट्रीम सिचुएशन में कि भारत सरकार के पास फंड्स ना रहे, तो वो उसकी हम कल्पना भी नहीं करते ना ऐसा कभी होना है, तो वो सॉवरेन है, उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। वहां पर ऐसी कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। जहां तक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है मनीष, आपको देखिए बैंक में पैसा जब रखना होता है, इसको सी गैस अकाउंट कहते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जब आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट पहले आ जाती है और आपको जो कैपिटल गेन में सेक्शन 54 में निवेश का समय दिया गया है 2 साल या 3 साल का, 2 साल में आपको खरीदना होता है, 3 साल में आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है, और वो आपके रिटर्न की डेट पहले आ गई, समय सीमा में अभी बचा है, तो आयकर आपसे ये उम्मीद करता है विभाग के आप उसको पैसे को एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, हम उसको सी गैस बोलते हैं, वो खुलवाएं किसी शेड्यूल्ड बैंक में, उसमें वो पैसा जमा कर दे। इससे आयकर विभाग को यकीन हो जाता है कि आप इसको आगे आने वाली तिथि पर निवेश करेंगे, जो समय सीमा है उसके अंदर वाकई करना भी पड़ता है, यानी कि पैसे वहां पड़े रह गए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका जवाब दे दिया। हाँ, जो आपने पूछा अगर आप मकान बेच के मकान ले रहे हैं तो उसमें आपको खाली गेन इन्वेस्ट करना है, पर यदि कोई और एसेट बेच के आप मकान ले रहे हैं जिसको हम सेक्शन 54F कहते हैं, उसमें आपको पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन निवेश करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मनीष के आपको समझ आ गया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आप बेशक जरूर दोबारा पूछ सकते हैं।
बिल्कुल। गुड़गांव से हमारे अगले कॉलर हैं सूर्यमान। बहुत बहुत स्वागत सूर्यमान आपका।
सर नमस्कार, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया।
मैंने आपका नाम सही लिया सूर्यमान जी?
सूर्यमान वर्मा
जी।
थैंक यू सर। सर मेरा एक डाउट था कि सिंस इंडेक्सेशन बेनिफिट्स अभी डेट फंड से रिमूव हो चुका है
जी,
तो अभी आर्बिट्रेज फंड एंड लिक्विड फंड, तो इन दोनों में से शॉर्ट टर्म इस 2 साल या 3 साल का नजरिया है, तो कौन सा बेटर रहेगा विद टैक्स एफिशिएंसी एंड गेन के रेस्पेक्ट में? सर
देखिए, वैसे तो फंड्स के ऊपर सूर्यमान जी संडे के दिन एक डेडिकेटेड मार्केट मंत्रा होता है जो खाली फंड्स के बारे में डिस्कस करता है, बट प्रिंसिपली आपने पूछा है, आपने कोई स्पेसिफिक फंड के बारे में नहीं पूछा। आर्बिट्राज फंड्स जो हैं पीछे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो लोग नहीं समझते आर्बिट्रेज फंड्स क्या होते हैं, वो फ्यूचर्स में लेके कैश में, कैश से लेके फ्यूचर में, इसमें वो बीच में जो उनका डिफरेंस होता है खासकर जब मार्केट वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है, तो ये फंड्स अच्छा रिटर्न अमूमन देखा गया है कि 7-8% इसमें रिटर्न आ रहा है। और दूसरा आपने लिक्विड फंड्स का पूछा, लिक्विड फंड्स जनरली होते हैं जो आपको बहुत छोटी अवधि के लिए आप पैसा रखना चाहते हैं, उसमें भी 6-7% 8%, कई दफे इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स आपको बैंक एफडी को बीट कर जाते हैं, कई दफे उसको मैच करते हैं, कई दफे बीट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उससे पिछड़ भी जाते हैं। तो ये समय समय पर सूर्यमान जी ये फर्क होता है कि लिक्विड फंड बेटर है, पर अभी जो पीछे मैं ट्रेंड देखूं पिछले 6 महीने का, तो मेरी अपनी एनालिसिस कहती है कि आर्बिट्राज फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शायद मार्केट वोलेटाइल ज्यादा रही पीछे इस वजह से हुआ। तो आप अभी फिलहाल के लिए कहें, पर आगे आने वाले समय में मार्केट इतनी वोलेटाइल रहेगी नहीं रहेगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लिक्विड फंड्स जो है वो थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी, अगर आप देख लें कि अगर आपको लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, आप चाहते हैं कभी भी पैसा निकाल लें आसानी से निकाल लें, तो लिक्विड फंड में जाइए। बाकी बहुत ज्यादा इनके रिटर्न में जमीन आसमान का अंतर नहीं नजर आता है। जी,
फ्रॉम मुंबई वी आर ज्वाइंड इन बाय रत्नाकर, वार्म वेलकम रत्नाकर।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
एक मेरे 2-3 सवाल है कि पहला सवाल है कि जो आईपीओ आते हैं, आईपीओ ने रेवेन्यू भी कम दिखता है, नहीं तो बोरोइंग के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आईपीओ ने इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अभी फ्राइडे 1000 पॉइंट से मार्केट डाउन था और बाद में वो 600-700 से ऊपर गया, तो ऐसे हालत में रिटेल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए। और तीसरा सवाल है कि जो बुक प्रॉफिट रहता है वो जब तक हम कैश नहीं करते हैं तब तक वो एआईएस में दिखाएगा क्या नहीं देखेगा।
चलिए रत्नाकर जी, आपने 3 सवाल पूछ लिए, 3 श्रोताओं के सवाल पूछ लिए, हर्ष और राजेश इन्होंने, पर अच्छे सवाल हैं इनके और मैं समझता हूं कि बाकी श्रोताओं को भी लाभ पहुंचाएंगे। आईपीओ देखिए, आईपीओ जब कोई कंपनी निकालती है तो आपको बता दो कि मर्चेंट बैंकर उसको ऑर्गेनाइज करता है, और ऐसा नहीं हो सकता रत्नाकर जी कि वो आईपीओ के पैसे का दुरुपयोग कर ले, या जिस वजह से उसने आईपीओ के फंड इकट्ठे किए हैं उसके अलावा वो दूसरे में यूज कर ले, ऐसा अमूमन होता नहीं है क्योंकि उसका एक फॉलो अप और रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। पर अगर आपको ऐसा कहीं दिख रहा है तो आप उस आईपीओ से दूर रह सकते हैं। आपने दूसरा पूछा कि मार्केट अभी कुछ रिकवर करी है गिरने के बाद, मार्केट बहुत वोलेटाइल है रत्नाकर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अभी भी हम बाय ऑन डिप्स की मार्केट और सेल ऑन राइज के मार्केट के कहीं बीच में खड़े हैं, मार्केट रेंज बाउंड है, 23,200-23,300 से उठ के आवाज 24,600-24,700 तक आ गई है, पर बीच बीच में एकदम डिप भी ले लेती है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं रत्नाकर जी, तो मुझे लगता है कि आप अट्रैक्टिव लेवल्स पे सेलेक्टिव स्टॉक्स, और हम लोग तो आजकल मार्केट में ये बात कर रहे हैं कि आप इंडाइसेस को मत देखिए, आप स्टॉक्स को देखिए, तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां हम नाम नहीं लेते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए, उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रख सकते हैं। तीसरा, आपने पूछा कि बुक प्रॉफिट एआईएस में नहीं दिखाई देता है, एआईएस जिसको हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट समझते हैं, मैंने नाम दिया है उसको आईना, इसे समझिए क्योंकि आपको दिखा देता है, तो वो जब तक प्रॉफिट होगा नहीं वो आपको वहां नहीं दिखाएगा, तो प्रॉफिट होगा तभी वो दिखाएगा, खाली आपने अगर मान लीजिए शेयर 100 रुपए का लिया और 300 रुपए का हो गया तो वो एआईएस में आपको नहीं दिखाई देगा। जी,
आशा जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, अगली कॉलर हैं। आशा, आपका बहुत बहुत स्वागत, क्या सवाल है आपका? हेलो, क्या दिल्ली से आशा लाइन पर हैं?
शी कैन हियर अस। लेट्स गो टू बैंगलोर नाउ टू मिस्टर एनआर प्रसाद, वार्म वेलकम मिस्टर प्रसाद।
हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग
राजेश जी।
गुड इवनिंग
मिस्टर कोहली।
गुड इवनिंग मिस्टर प्रसाद।
एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। 2 क्वेश्चंस। सी फॉर एग्जांपल, जस्ट वांट अ क्वेरी। सी फॉर एग्जांपल, कंपनी सेज दैट इट्स टोटल वैल्यू इज 24 बिलियन, बट मार्केट कैप सेज अराउंड some 18,500 directly ji aap. Okay, what is the relationship between that 24 billion company and this market cap? This is my first question. My second question is, in the last few weeks, maybe since then this problem of Jar Soros, again Indian GDP has been downgraded by all the top analysts. It is now from 7.2, it has come down to 6.5.
Yeah.
Would it impact our Indian market? Thank you. These are my two questions.
Mr. Prasad, your first question is regarding the book value and the market cap. Market pack, we all know, I think it's good for the viewers, the listeners to know as well, that market cap is the total amount of floating stock in the market multiplied by the current price. That's the market cap. It's called market capitalization. Total book value is the value as on the balance sheet. We calculate the book value. There are various methods of calculating the book value, but broadly you can understand it's the net asset total of the company. So I think the two are totally different. It is not necessary, Mr. Prasad, that the market cap may always match with the book value. It can be less, it can be more. Depends on speculation, depends on company's performance, depends on what is the futuristic outlook of the sector of the company. That many a time we find market cap far more than the book value. So the two are not related. I mean, but as a matter of fundamental analysis, yes, one of the factors that we watch is the book value. So apart from the PE ratio, the book value, the sectoral performance, the profit, the bottom lines, the top lines, we see a lot of things. So one of those factors is book value, which is kept in mind. You asked about Indian GDP downgraded. See, there is a bit of a slowdown. I think economy of the world across is not hunky-dory right now. It's not doing too great. So because India is also integrated as part of the global economy, so the impact of global slowdown, is also felt. The ripples of that are felt in India as well. So a little bit here and there, I would say a movement of 50 basis points here and there really doesn't matter. I think Indian economy has got very good resilience and it can start picking up any time. We saw during the Diwali quarter, suddenly the sales were sales are very good. The automobile sector had collected a lot of stock, which all got cleared up. But yes, I mean, as far as the first quarter was concerned, I think because of the elections and all that, there was a model code of conduct. So things slowed down a bit, but they do. So these ups and downs are there. But the fact of the matter is, Mr. Prasad, that we still remain one of the fastest growing emerging economies. Even if we are down to 6.8, we are far better than rest of the emerging economies. In fact, I would say rest of the world. As well.
शंकर भोपाल से हमारे साथ आ गए हैं. शंकर, आपका स्वागत है. क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
नमस्ते मार्केट.
नमस्ते.
नमस्ते कोहली जी.
नमस्कार.
सवाल है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बजट, रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी इंस्टेड ऑफ 5-6 स्लैब्स जस्ट 1 or 2 or 3 स्लैब्स. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स सिंप्लीफिकेशन? और जस्ट छोटा सा एक सवाल है, अदर देन दिस, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. So what is the reason, what is stopping this government, which is taking very good steps to, restrict spending on election by MP, MLA, etc. on a fixed amount, and that too funded by the taxpayers' money. So this is all election drama or election festival is taxpayers' money. So how to build a consensus among people that we spend limited amount of money from taxpayers' kitty and fund it through only election commission rather than, taking bond and all that.
Yes, Shankar, your first question was on the expectations from the budget. It's not too far. It's on 1st of February. I think we're not very far from the budget. See, GST, Shankar, is a matter of GST Council. So a lot of people, they confuse GST, what will happen in the budget. So GST is not anymore a subject of union budget. It's, the decisions are taken by the GST Council. The meetings keep happening from time to time. As far as income tax is concerned, yes, we can expect some major announcements on income tax, because the finance minister in the last budget did sound that they are working on the new income tax law, which is simplified, which is more transparent, more tax friendly. So we can see those announcements coming in the budget. The new income tax, it used to be called income tax code when there was a transformation going on. I think that got stalled. So we can look at a new income tax law which is tax friendly. Specific announcements are very difficult to say, because if it's a completely new look, but all I can say is it'll be very simplified, easy to read for taxpayers, because it's very complicated to read for taxpayers. Your third question was one nation, one election. Yes, I think we are moving in the right direction. You're right, because the elections round the year, there's so much of spending, so much of policy freeze which happens because of the model code of conduct, which hampers and obstructs the governments around the country from taking major policy decisions and developmental measures. So it's a very, very positive move. As far as spending, I think once we move to one nation, one election, you will see a very rationalistic democratic process in India, which will automatically take care of the concern you've expressed with regard to spendings and so on. So when there won't be very frequent elections, I'm sure things will get rationalized and fall in place automatically. Yeah.
Satish and Rajkumar from Delhi, please stay with us as we tell you that on Wall Street, the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average notched record closing highs in a shortened Black Friday session, lifted by technology stocks, while retail was in focus as the holiday shopping season kicked off. Information technology stocks helped boost the benchmark S&P 500 and the blue chip Dow, which was also aided by industrial stocks. Nvidia gained 2%, while Tesla climbed 3.7%. Investors monitored shoppers' response to deep Black Friday discounts. Adobe Analytics estimated consumers would spend a record $10.8 billion in online purchases, up 9.9% from Black Friday last year. So the S&P 500 rose 0.6% to close at 6,032. The Dow Jones Industrial Average gained 0.4% to end at 44,911. And the Nasdaq added 0.8% to 19,218.
Satish agle caller honge, Delhi se. Satish ji, aapka swagat hai. Kya sawal hai?
Good evening, sir. Sharad ji, my question is, what is algo trading for the retail investor? And number two, this investor education fund, other day, you told that it will come. I applied in August 23 by completing all formalities. Till date, nothing has come. I visited at least 4-5 times.
Okay. All right. Satish ji, your first question was relating to algo trading. Well, algo trading is machine-based trading where a computer-driven trading happens. You can set your formulas, you can set your preferences in the software, and the machine keeps trading. Basically, people who do intraday and short-term trading, speculative trading, they resort to algo trading because what the system does is it purchases and sells automatically as per a pre-programmed methodology which is inducted into it. So it is basically used for speculative and short-term traders. That's algo trading. And with regard to your grievance related to investor education fund, I'm very sorry to hear that you haven't been, despite follow-ups, you haven't been able to receive the amount in your account. I would suggest that you can probably try and make a complaint to the RBI ombudsman as well. Or since I see that you are in Delhi, so you can probably look at making a visit to the Parliament Street office of Investor Education Fund, and they should be able to help you if you personally go. I'm sure there must be some slippage somewhere or a communication gap which must have kept things in abeyance till now. So therefore, I would advise you to take one of the methods. And overall, we are very sorry to hear, because it's not a very nice feeling to hear that somebody's been repeatedly trying to retrieve the amount.
Right. Rajkumar from Delhi joins us. A warm welcome, Raj.
Yeah, good evening, everyone.
Good evening.
I have a question related to PAN and Aadhaar linking. Recently, government has imposed penalty who have not linked their Aadhaar and PAN. So pensioner in this also penalized with heavy charge like TDS. So can it be reversed from any type of ITR?
Rajkumarji, this PAN-Aadhaar marriage was announced long ago. And a lot of dates were announced, where people were giving ample number of chances. Repeated announcements were made. I remember even Market Mantra, we used to talk about it quite often. And through newspapers, through all the media platforms, this linking was announced. So finally, you have to take a call that if people still haven't done it, then you still allow. But it comes at a cost. So unfortunately, Rajkumarji, you will have to pay that cost. Now, there's no other way PAN and Aadhaar can be linked apart from depositing that penalty. You are a very senior person, so I'm sure due to some unavoidable reasons, you must have missed that deadline, repeated deadlines, I would say, number of deadlines, I would say. So I would advise you to get it linked, and you can pay the fee which is applicable. I mean, there's no way this can be bypassed, so that I know until now. Yeah.
RS Dahiya sahab hain hamare saath jude hue, hamare regular caller, regular listener hain. Kya sawal hai Dahiya sahab aapka?
Sir, namaskar.
Namaskar ji.
And special thanks to Kohli ji.
Namaskar Dahiya sahab. Thank you.
Kohli ji se sawal ye hai ki is the pain of bearish phase in the market is over or we iske sath abhi bhi hum joojhte rahenge?
That's a very interesting way of putting it, Mr. Dahiya. Well, this is a
if only we knew.
Yeah, exactly. This is a billion-dollar guess. And, you know, in the market circles, what we say that you should never predict the market. But yes, we do analyze the market. I think the pain may not be over as yet, I would say, if you want a one-liner answer. Because the market has been very volatile and the global economy is not doing that great. Mr. Trump is going to come on the 20th of January. He's already announced trade wars, tariffs being imposed on China, Mexico, you know, other places, and he's BRICS currency ke khilaf unhone, he's given a statement that if India joins, he's going to levy 100%. So it's going to be a very mixed kind of trend, but overall I don't really see a very extraordinarily bullish trend in very near future.
Do you think we're going to have a tariff war starting 2025?
I mean, if President Trump so decides, then yes, a tariff war is in the offing.
The beginning has already been done.
Exactly. He's set the curtains, and I think if that happens, then you might see a lot of volatility in the market. So, Mr. Dahiya, to answer your question, I don't really see an extremely buoyant bullish phase in the very near future. But yes, in the long run, market does keep going up and down. So, very range-bound movement that we are seeing. It's not bearish now. It went down to 23,200. Now, it's recovered to 24,700. So, it's not bearish. But yes, it's moving in a range-bound manner as of now, Mr. Dahiya.
जयपुर से जितेंद्र है हमारे पास. जितेंद्र जी, सवाल पूछ लें जल्दी से.
हेलो. हाँ, हेलो
जी. जी पूछिए.
हाँ हाँ सर. अच्छा, जैसे अभी कई आईपीओ आता है तो उसमें जैसे एक होता है फ्रेश, बोलते हैं उसको ऑफर फॉर सेल, एक होता है प्रमोटर, उसमें से कुछ ले जाते हैं. उसमें एक और भी होता है कि कुछ लायबिलिटीज उससे कम करते हैं जो लोन लिए रहते हैं. तो ये ऑफर फॉर सेल और ये प्रमोटर से समझाए इसके बारे में, क्या कौन सा अच्छा है? मतलब वो लायबिलिटी कम करते हैं वो ठीक है
जी,
या जी, क्या समझाए?
देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह जितेंद्र जी ठीक होते हैं. आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है. जब कोई कंपनी पहली दफे मार्केट में आती है तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं. उसके बाद एफपीओ भी होते हैं जिसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, कि उसके बाद एक निकाल दिया जाता है कुछ समय बाद. और ऑफर फॉर सेल बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसमें प्रमोटर्स कुछ पैसा मार्केट से इकट्ठा करते हैं कंपनी की डेट को कम करने के लिए. आपने बिल्कुल ठीक कहा, कंपनी के ऊपर बहुत हैवीली लेवरेज्ड कंपनी हम उसको बोलते हैं अगर वो है, तो उसके लिए लोग ऑफर फॉर सेल निकालकर प्रमोटर्स और इक्विटी से पैसा लेके और अपने लोन को रीपे करके और अपनी बैलेंस शीट को हेल्दी कर देते हैं. अब ये जितेंद्र जी, इस सवाल का आपने जो पूछा उसका बहुत स्पेसिफिक मैं जवाब दूं तो वो कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, क्योंकि इसमें हमको बैलेंस शीट देखते हैं, हम आईपीओ की रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के सारे कंटेंट देखे जाते हैं, ऑफर फॉर सेल की कंडीशंस देखी जाती हैं, वैल्यूएशन देखी जाती है, प्रीमियम कितना ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड. तो दोनों ही चीजें हो सकती है, कभी आईपीओ अच्छा हो सकता है, कभी ऑफर फॉर सेल, कभी दोनों अच्छे हो सकते हैं और कभी दोनों ही अच्छे नहीं हो सकते. सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन जितेंद्र इसमें बैठते हैं जी.
Moving on, the global crude oil prices posted solid gains during the week to end at a three-week high level on expectations that additional sanctions on Russia and Iran could tighten supplies and that lower interest rates in Europe and the US could boost fuel demand. So the Brent crude oil futures ended the week at $74.49 a barrel, surging 5% during the week. The US crude oil futures closed the week at $71.29 a barrel, jumping 6%. So how do you foresee now the market? We have at least a minute to discuss in the coming week.
I think the market is going to remain range-bound unless there's a big trigger. The big trigger, for the sake of listeners, I must tell that, is the Fed announcement, which is going to come around the 17th or 18th of December, where a 25 basis point rate cut is definitely expected. So the market may rejoice for a while. But I think overall, I would say the bond yields are still very high. Dollar index is also not looking very, very friendly. The volatility in the market is going to continue. And of course, for India, the next big trigger is the union budget. So we might see a pre-budget rally. Abhi, our listener was asking, so I should have mentioned to him, but he can listen to it now, that a pre-budget rally may be expected. The government is going to definitely make some landmark decisions in the forthcoming budget, which may prove out to be good or bad for the market. But overall, volatility is definitely going to remain.
बिल्कुल. आज के लिए इतना ही. सारे कॉलर्स हमसे जुड़े, सवाल पूछा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
माय प्लेजर. थैंक यू
शरद फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज, द हेडलाइंस वंस अगेन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज इन द लिमिट फॉर कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख रुपीज. On Wall Street, the Dow and the S&P 500 end at record closing highs. And Brent crude oil futures surge 5% during the week to end at $74.49 a barrel.
आज के लिए बस इतना ही. तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया. कल शाम 6:30 बजे फिर मार्केट मंत्रा के एक और खास एडिशन के साथ, जिसमें हम खासतौर पर म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे. आप जुड़ सकते हैं. तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए. नमस्कार.
नमस्कार.
Market Patra.